मैं बेसहारा हो गई
बाबा,
मैं भी कस हो गई
किसने ये खेल मेरे साथ शुरू किया है? किसी ने मेहरी की उन काली आंखों को मेरे कमरे की अलमारी के आईने पर चिपका दिया जो मुझे 30 साल पहले की तरफ ले जाती है।
मेहरी एक ऐसा रास्ता थी जिस पर हमें चलना था और हम चले भी। यूसुफ की बीवी मेहरी एक गलत औरत थी हमारे बीच। यूसुफ की बीवी हमारे बीच एक अजनबी औरत थी। उसे खुद को दफा कर देना चाहिए था, चला जाना चाहिए था।
किसी भी कीमत पर?
हाँ, किसी भी कीमत पर। मेहरी अब खत्म हो गई, मेरी सड़ गल गई, उसकी याद मिट गई, नाम मिट गया। हमने अपना खानदान बचाया, हमारे बाप की रूह को चैन मिल गया।
मेहरी की उन काली आंखों को मेरे कमरे में किसने चिपकाया? मेरे या तुम्हारे अलावा तीसरा कौन इस राज से बाखबर है?
कोई भी नहीं।
क्यों नहीं? तुमने नरगिस को भुला दिया जो बच्चों की परवरिश करती थी? वही तीसरी है।
गंदा काम करने पर मजबूर हूँ ताकि वो चीज जो देखी थी उस पर खामोश रहूं और अपना मुंह बंद रखूं। मुझसे सिर्फ देखने का ताल्लुक है मोहतरमा। मैंने अपना मुंह बंद रखा और पुलिस को कुछ नहीं बताया। मैं डर के मारे पुलिस को कुछ नहीं बताया कि कहीं पूछ ना बैठे मैं कहां था और क्या कर रहा था। मैंने वहां देखा कि नरीमन और उसका भाई टर्मिनल में चाय की दुकान के तहखाने में एक लाश को घसीट रहे थे। अभी यही बता रहा था कि वो
अहमद रजा की लाश थी।
इन सब का ताल्लुक उस टर्मिनल की चाय की दुकान और उस तहखाने से है। यही वजह है कि सभी वहां गया था।
सलाम। ये मेरी शान के खिलाफ है कि कोई मेरा पीछा करे। ये तुम्हारी शान के खिलाफ है कि तुम किसी का पीछा करो। तुमने मुझे एक तजवीज पेश की, ऐसी तजवीज जिसके बारे में कहा कि खुद पर भरोसा करके पेश किया। अभी उस तजवीज को 2 घंटे ही गुजरे हैं, तो फिर मुझे भी इस बात की इजाजत दो कि मैं भी अपनी सोच के सहारे जवाब दूं कि तुम्हारी तजवीज को मानूं या ना मानूं। अगर नहीं तो उसकी वजह क्या होनी चाहिए, और अगर मान लूं तो किन वजूहात की बिना पर कबूल करूं, और उसूली तौर पर मौजूदा हालात में शादी करना मुनासिब होगा या नहीं, मेरे लिए कुछ ऐसा वजूद में आएगा या नहीं।
अगर तुम्हारी भावा जो चाय की दुकान पर गई तो नरीमन अच्छा आदमी नहीं है, खजिस्ता के लिए खतरा है, मेरी हालत भी ठीक ठाक नहीं है। तुम पुलिस को खबर करो।
नरीमान भाग गया, असली आदमी भाग गया, पुलिस आने वाली है। भागो, दौड़ो, जल्दी दौड़ो, भागो, जाने मत देना उसको।
आखिर बताओ तो सही क्या हुआ?
बाद में मैं वही हूं जिसने तुमको फोन किया था। नारीमान भाग गया, अहमद रजा की बीवी उसके पीछे गई।
रजा कहाँ है? वो लाश जिसको गोदाम के अंदर तुम खींच रहे थे मेरे शौहर की थी क्या? थी?
मैं कातिल नहीं हूं। मैं उसको पेपर पर दस्तखत करने के लिए राजी कर रहा था ताकि मुझको भी मेरा हिस्सा मिल जाए और सलीम को भी उसका हिस्सा मिल जाए और अहमद रजा को भी अपना हिस्सा मिल जाए। वो किसी तरह तैयार नहीं हो रहा था, अपनी जिद से बाज नहीं आ रहा था। मेरे हाथ में नहीं था, मैं गुस्से में था, उसको सीने के बल धक्का दिया। उसी चाय की दुकान में उसका सर मेज से जा टकराया फिर उठ नहीं पाया, बेहोश पड़ा था। मैं डर गया कि कहीं मर ना जाए। मेरा भाई भी डर रहा था कि कहीं मर ना गया। हम लोग बुरी तरह से डर गए थे कि मर ना जाए, इसलिए इमाम अस्पताल में भर्ती कर दिया ताकि लोग उसकी मदद कर सके, कहीं मर ना जाए। लेकिन जब बेहोश था तो उसका दिल धड़क रहा था, इसका मतलब वो उस वक्त जिंदा था, सांस चल रही थी मतलब जिंदा था।
इस बस में कोई मर्द है जो इसका हाथ बांधकर पुलिस के हवाले करे?
सिगरेट की स्मगलिंग, तुम अमाद हो, ठीक है ना? कहो, हाँ सही है।
हम और अमाद नरीमान के शागिर्द हैं, गैर कानूनी कामों के साथी, सिगरेट स्मगलिंग करने वालों के साथी, जिनका सरगना नरीमान है। 15 शाबान की रात थी, मैं अपने शहर घर वालों की खैरियत लेने जाने वाला था। कभी कभार हम और अमाद उस तहखाने वाले गोदाम में सिगरेट के कार्टूनों में से कुछ पर हाथ साफ कर दिया करते थे। सिगरेट को गाड़ी में लाद करके कार्टून के कार्टून उठाकर बेच दिया करते थे। 15 शाबान की उसी रात को उस गोदाम से हम लोगों ने चोरी की ठानी। अचानक हमने उस गोदाम में नरीमान और उसके भाई को देखा, देखा कि एक लाश की तरह कोई चीज थी जिसे ये खींच कर अपनी गाड़ी की तरफ ले जा रहे थे। उन लोगों ने हमें नहीं देखा, हम वैसे ही छिपे बैठे रहे। सोचता रहा, खुदाया ये कौन था? हम हंगामा और झगड़ा भी नहीं कर सकते।
झगड़ा नहीं किया कि कहीं तुम्हारी गैरकानूनी हरकत का पता ना चल जाए, है ना? के कोई ये ना पूछ बैठे कि उस चाय की दुकान के गोदाम में कब और क्यों गए थे, ठीक है ना? क्या ऐसा ही है?
बिल्कुल। इस वाकया के 2 दिन पहले नरीमान मेरे पास आया था, मुझसे अहमद रजा का पता ठिकाना पूछ रहा था। कहा अहमद रजा और सलीम के बीच दोस्ती कराना चाहता है। जब खुजस्ता खानम और जनाब वली मुझसे मिलने आए और बताया कि अहमद रजा लापता हो गया है, जब मुझे ये पता चला कि अहमद रजा के वाकया को लेकर नरीमान भागा हुआ है, तो अचानक अहमद रजा का ख्याल मेरे दिमाग में आया। मैंने कहा कहीं वो अहमद रजा की लाश तो नहीं? अहमद रजा मेरा चचाजाद भाई था, मैं ऐसे ही इसको नहीं छोड़ सकता था, इसीलिए मैंने फौरन पुलिस को फोन कर दिया। खुद भी नरीमान की तलाश में भागा, जिसको कल रात उस गोदाम में छुपा बैठा देखा था। बस यही।
सलाम।
सलाम।
12 दिन पहले 15 शाबान की रात में मेरे शौहर को यहाँ इमरजेंसी वार्ड में लाया गया था, बेहोश था। यहाँ भर्ती करा के लोग चले गए थे। अहमद रजा बाबाई नाम था, उसके सर पर क्या मुसीबत नाजिल हुई?
ओ मोहतरमा, 12 दिन पहले की बात मैं आपको क्या बताऊँ?
तुमको बताना पड़ेगा।
मुझे छुट्टी पाए मरीजों का रजिस्टर चेक करना पड़ेगा।
बराए मेहरबानी देखो।
नाम क्या बताया आपने?
अहमद रजा बाबाई।
अहमद रजा बाबाई, हाँ ये रहा, हाँ ये रहा अहमद रजा बाबाई। तुम परेशान मत हो, खुदा का शुक्र है कि उसे छुट्टी मिल गई। यहाँ आने के 3 घंटे बाद उसके पहचान वाले आए और उसे साथ लेकर यहाँ से चले गए।
पहचान वाले?
हाँ, अलबत्ता हमारी राय ये थी कि उसे यहाँ रोका जाए, लेकिन चूंकि वो चल सकते थे इसलिए चले गए अपने पहचान वालों के साथ।
ये पहचान वाले कौन थे?
मैं नहीं जानती। हमारे यहाँ 2 तरह की फाइलें हैं, एक कंप्यूटर वाली, दूसरी हाथ की लिखी हुई। तुम्हें ज्यादा जानकारी चाहिए तो आर्काइव जाना होगा।
आहा, मिल गया। वो ठीक हो गया था इसलिए चला गया। उसका कोई पहचान वाला आकर ले गया। अभी तुम्हारी परेशानी क्या है?
मैं जानना चाहती हूँ उस पहचान वाले का नाम क्या है।
नाम तो नहीं है, उसकी दस्तखत है। मुझे दो बहन।
ये रिपोर्ट किसने तैयार की है?
शाम की ड्यूटी की नर्स ने। अगर उसका नाम जानना चाहती हो, चाची है। अगर उससे तुम्हारा मिलना बहुत जरूरी है तो तुम यहीं उसका इंतजार करो।
बाबक और जनाब सहिश्ता का खाना गैस के बगल में रख दो ताकि गर्म रहे।
जी बहुत अच्छा।
क्या हुआ कि तुमने शादी करने का सोच लिया?
ये समझ दिल से आती है कि कमी है। इस बात पर यकीन रखना कि मुकम्मल नहीं हो, कमी पर ईमान रखती हो। तुमको मालूम है कि क्या है? मर्द और औरत की कहानी एक कपड़े जैसी है। कपड़ा बदन को छुपाता है और शादी औरत और मर्द की कमी को। ये समझ भरोसे की जरूरत और मुकम्मल होने की जरूरत के सबब आती है। तुमने ये क्यों पूछा?
जनाब, क्या मेरा सैंडविच तैयार है?
क्या तुम्हारी टेबल पर आ जाऊं?
मेरी टेबल पर आकर क्या करोगे?
तुम्हारा फाल निकालना चाहता हूं।
मुझे फाल पर भरोसा नहीं है।
जब देखोगे सही बता रहा हूं तो भरोसा करने लगोगे। अपनी मुट्ठी खोलो, तुम्हारा फाल देखूं।
मुट्ठी खोलने की जरूरत नहीं है, बंद मुट्ठी से देखो।
ऐसा तो नहीं हो सकता ना।
सुनो, ऐसा ही होता है। सुनो, मैं बताता हूँ। नरगिस जान तो याद होगी ना? नरगिस जान ने इतनी अच्छी तरह से समझाया है कि मुझे सब कुछ ज़बानी याद है। मुंह बनाना, गुस्सा करना, पीछे मुड़ना, चलना। कल रात ख्वाब देखा था, अपने डैड को देखा था। भौहें तनी हुई थी, जानता हूँ क्यों। अपनी पीठ घुमा रखी थी, जानता हूँ क्यों। क्योंकि राजी नहीं है, क्योंकि एक रूह बन गए हैं, क्योंकि अब जिस्म की हालत में नहीं है, क्योंकि अब जिस्म नहीं कि नफरत समझ पाए। नफरत एक लंबी छलांग है, मार दी तो मार दी, फिर हटने का रास्ता बंद है। अगर तुम्हारे दुश्मनों ने दुनिया को जंगल समझ रखा है तो तुम्हें भी समझना चाहिए, उसी की तरह वैसे ही हथियार से वार करना चाहिए। नरगिस जान मुझसे कहा करती थी, तुमको नरगिस जान तो याद है? नरगिस जान ने मुझे बताया था कि जब मैं और मेरा हाथ एक साल का था और जब मेरे बाप का कफन सूखा नहीं था, तब मेरे चचा परवेज शाइस्ता ने इज्जत और भरम रखने की बजाय, मेरी और मेरी माँ की देखभाल करने के बजाय, मेरी माँ की इज्जत को निशाना बनाया, मुझे तबाह कर दिया। मेरा और मेरे खानदान का नाम मुझसे छीन लिया, दोनों तरफ से मुझे यतीम कर दिया। मैं बेमकसद होकर रह गया और इस घर का नौकर बन के रह गया। अब मैं और मेरे हाथ 30 साल के हो गए हैं, अब मेरी और मेरे हाथों की बारी है। और वो बेचारा अभी कमजोर तरीन हालत में है। पहले उसकी दौलत गई और अब उसकी बेटी की बारी है। उसकी इज्जत मेरे निशाने पर है, उसकी बेटी को अपने निशाने पर रख चुका हूँ। रोया मेरे निशाने पर है, परवेश शाइस्ता की बेटी मेरे निशाने पर है। ये दुनिया और लोग तमाशा देखेंगे कि मैं उसके साथ क्या करता हूँ।
अरे बाबा, मेरा पीछा छोड़ो।
सलाम बाबा यूसुफ। एक मेहरबानी करोगे मुझ पर? क्या ऐसा हो सकता है अभी मेरे नींद में ना हो, मेरे ख्वाबों में ना हो, ताकि तुम्हारा बेटा तुम्हारे भाई से हक हासिल कर सके? पहले नाहिद खानम और फिर उसकी दौलत और अब उसकी बेटी की बारी है। हां, कुछ दिन मेरे ख्वाबों में मत आना, ना आना ख्वाबों में, ताकि मैं सुस्त ना पड़ जाऊं, ताकि अपने मकसद से पीछे ना हट जाऊं। हेलो, सलाम। अच्छा वक्त गुजर रहा है क्या?
सलाम नाहिद। अभी भी मशहद में है। क्यों, क्या बात है?
क्यों का मतलब है कि वो मशहद में नहीं है। मैंने उसे तेहरान के एक होटल में देखा है करीब आधा घंटा पहले।
बकवास मत करो, लगता है ज्यादा खा लेने की वजह से तुम्हें बदहजमी हो गई है। उसके जैसा किसी और को देखा होगा। सुबह मशहद से उसने मुझे फोन किया था, कहा वापसी की फ्लाइट रात को है।
देखो, मैं कह रहा हूं कि वो होटल में था तो था, मैं तुम्हारी जमीन की तरफ जा रहा हूं। किधर से चलें?
मेरी जमीन पर किस लिए?
सुबह जब आप सो रहे थे तो जमीन के चौकीदार ने फोन करके बताया कि वक्फ बोर्ड से लोग आए हैं और जमीन पर तार से बाउंड्री खींच रहे हैं।
जानते हो इसका क्या मतलब है? यानी ये जमीन अब तुम्हारी नहीं रही।
मतलब ये कि अब हम जमीन बेचकर कर्जदारों का पैसा भी नहीं लौटा सकते।
जानता हूं अब काम नहीं हो सकता।
ऐसा लगता है जैसे तुमको कोई परेशानी नहीं है।
मगर परेशानी किस तरह की होती है? अगर तय पाए कि चिल्लाऊं, अपना सर पीटूं, रोना धोना करूं तो यह सिर्फ नाहिद के लिए है। सिर्फ वो है जिसके लिए रोया जा सकता है। मुझे पता है कि मैं कहां खड़ा हूं। जानता हूं कि मेरी हालत क्या है। जब तुम ये बोर्ड मुझे दिखाते हो तो मैं इसका मतलब समझता हूं। इस बोर्ड और वक्फ का मतलब मैं बखूबी जानता हूं। बाबक ने आज इस जमीन के बारे में चौकीदार से सुना, तुमने बाबक से सुना, तुम दोनों को आज पता लगा। मैं ये बात पहले से जानता था, मैंने आज नहीं सुना। मैं बहुत पहले से कैनूश के जरिए यह सुन चुका था कि यह जमीन वक्फ की है। उसी वक्त समझ गया था कि दोहरी मार पड़ी है, जमीन बेचने वालों की तरफ से भी और अहमद रजा की तरफ से भी।
तुम जानते थे और मैं जो तुम्हारा वकील हूं मुझे नहीं बताया? क्या मैं बेवकूफ हूं?
किसी को भी नहीं बताया, जानबूझकर नहीं बताया। जानता था कि अगर बता भी दूंगा तो यही हालत होगी। वही जिसके बारे में बाबक बता रहा था, वही चीजें जो तुम बता रहे हो। मुझे अपने हालात का अच्छी तरह से पता है। मेरे हालात में सिर्फ एक चीज पाई जाती है, दो अल्फाज, आखिरी रास्ता। मगर मैं इन दो लफ्जों के बारे में नहीं सोचना चाहता। जानते हो क्यों? इसलिए कि मेरे पास रोया है, मेरी बेटी मेरे पास है, उसकी जिंदगी को खुशहाल बनाने की जिम्मेदारी मुझ पर है। इसलिए आखिरी रास्ते के बारे में नहीं सोचना चाहता। अदालत में मेरे लिए एक मीटिंग रखो। मैं अपना दिवालिया होने का ऐलान करना चाहता हूं। मैं आग में कूदना चाहता हूं।
कियानूश से कहो कि तुम्हारे लिए अदालती मीटिंग का बंदोबस्त करे। बेवकूफ आदमी, मैं इसका वकील हूं और ये मुझसे ही बात छिपाता है। मैं इसका दोस्त हूं और ये मुझसे ही बात छिपाता है। इसी कियानूश पियानूश के लायक हो तुम।
मैं अपना पहला मकाम हासिल कर लूंगा। मैं सब कुछ ठीक कर लूंगा।
सलीम ने कहा था कि अगर मैं अहमद रजा को मना लूंगा तो बस का एक तिहाई हिस्सा तुम्हारे नाम कर दूंगा, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी चीज थी। उसके बाद मैं खुद के लिए काम कर सकता था, फिर गलत काम के लिए किसी का साथ ना देना पड़ता।
कि गैर कानूनी काम के सरदार बन जाओ, सिगरेट स्मगलिंग के सरदार क्यों? ठीक कह रहा हूं?
तुमने उसको मारा ताकि अंगूठे का निशान लगवा सको, क्यों?
नहीं, कुरान की कसम, मैंने सिर्फ उसके सीने पर धक्का मारा था। वो टेबल से जा टकराया। मैंने और मेरे भाई ने जल्दी से उसे अस्पताल पहुंचाया। हजरत अब्बास की कसम खाता हूं जनाब इंस्पेक्टर साहब, जब बेहोश हुआ था तो उसके दिल की धड़कन चल रही थी। मुझे नहीं मालूम कि वो क्यों और कहां गायब हो गया।
अगर मैं ये कहूँ कि 8 अरब का धोखा देकर गायब हो गया है तो क्या कहोगे?
अहमद रजा, मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखता, बस जिंदा हो कि मैं यहाँ से छुटकारा पाऊँ।
निजात का कोई सवाल ही नहीं है स्मगलर, तुम्हारा भाई कहाँ है?
एक मिनट के लिए आएंगे जनाब?
क्या है?
अभी 2 घंटे से अहमद रजा की बीवी इमाम हॉस्पिटल में धरना देकर बैठी है। क्यों मुझे नहीं मालूम, मगर बैठी है।
क्यों का जवाब मुझे मालूम है, वो अपने शौहर के बारे में जानने गई है, इमरजेंसी वार्ड के बारे में पता लगाने। इसको बंद कर दो और चलो इमाम अस्पताल, ताकि हमें क्यों का मतलब समझ में आ जाए।
जनाब अली,
अंदर आ जाओ।
आपकी इजाजत है।
तकलीफ का शुक्रिया बेटी। तुम्हारी माँ हज खानम कैसी हैं? अभी तक बीमार हैं क्या?
बीमार थी, उन्होंने अपनी उम्र आपको दे दी।
खुदा उनको बख्श दे बेटी। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैह राजिऊन। आखिरी वक्त में मुतमईन थी बेटी,
लगता तो ऐसे ही है।
बच्चों से राजी थी
शायद।
अच्छा तो फिर किसके साथ जिंदगी गुजार रही हो, यानी घर में कौन कौन है?
मैं अपने भाई फरजाद के साथ हूँ, अलबत्ता मैं अलग घर लेकर रहती हूँ।
खमखार भी हो?
जी हाँ, हम लोग आपस में बहुत अच्छे हैं। उसने शादी कर ली है, मैंने सोचा उस पर बोझ ना बन जाऊं, इसलिए अलग मकान ले लिया है।
अलबत्ता वो खुद भी आता जाता है, उसकी बीवी भी। दूरी और दोस्ती एक ही चीज है।
मगर एक दूसरे का गम भी बांटते हैं, बकौल आपके।
अल्हम्दुलिल्लाह।
इजाजत दें।
ये कल रात झगड़ा कैसा था तुम्हारे खुजस्ता और तुम्हारे दोस्त के बीच में?
कुछ नहीं, खुजस्ता से झगड़ा नहीं था। मैं और मेरी एक दोस्त छोटी सी एक
खुजस्ता को कभी कोई बहन ना थी बेटी, उसका ख्याल रखना बेटी। वो मुझे बताने के बजाय सारी बातें अपने हद तक रखती है, बहुत खुददार है। जाहिर है बाप बेटी का लिहाज भी है। तुम उसकी बहन बनकर रहो, उसकी राजदार और हमदर्द बनकर रहो।
जो बैठकर बातें करते हैं।
मोहतरमा चाय जी। जब उसको इमरजेंसी में ले गए तब तक वो बेहोश था, लगता था सर के पिछले हिस्से में चोट लगी है। होश में आने से पहले जेब की तलाशी ली गई ताकि कोई शिनाख्ती कार्ड या उसकी पहचान मिल सके कि उसके घर वालों को खबर की जा सके। उसी वक्त उसका मोबाइल बज उठा। उसके मोबाइल का जवाब दिया। मैंने पूछा कौन है, उसके बाद पूरा वाकया बयान किया। 20 मिनट बाद दो लोग अस्पताल आए। तुम्हारे शौहर का सर थोड़ा चकरा रहा था लेकिन बोला तबीयत ठीक है। उसके साथी बोल रहे थे कि फ्लाइट है। उसके बाद वो लोग चले गए बहुत जल्दी। मुझे याद है जिस बिस्तर पर तुम्हारे शौहर लेटे हुए थे उसके बगल में एक पासपोर्ट और टिकट छूट गया था। पासपोर्ट पर तुम्हारे शौहर की फोटो लगी हुई थी।
पासपोर्ट?
तुम्हारे शौहर के सामान में हमें पासपोर्ट और टिकट नहीं मिला था। मेरे ख्याल में वो दो लोग जो आए थे वो छोड़ गए थे।
सलाम,
अभी 10 मिनट भी नहीं हुए थे कि उनमें से एक आदमी दौड़ता हुआ आया और वो पासपोर्ट और टिकट लेकर चला गया।
जा रहा हूँ दरवाजे पर कुरान की टेप लगा देता हूँ। बहुत ज्यादा खामोशी और सन्नाटा है।
बेटी तुमने मुझे अपने घर क्यों नहीं जाने दिया?
माँ यहाँ रहोगी तो अच्छा है, वहां अकेले जाकर रहोगी क्या मतलब? हालांकि इसी मोहल्ले की मस्जिद में फातिहा खाने की मजलिस होने वाली है। जाती हूँ कुछ लेकर आती हूँ, इस तरह बीमार पड़ जाओगी। तुमको अपने पैरों पे खड़ा रहना होगा ताकि सोगवारी कर सको, इज्जत निभा सको। अभी जब तक कोई नहीं है 2 मिनट लेट कर आराम कर लो।
मोहसिन कहाँ है?
बख्श दे